আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলিফ লাম মিম র তিলকা আয়াতুল কিতাবি ওয়াল্লাযী উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা ওয়াল রাব্বিকাল হক ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইউমিনুন আল্লাহুল্লাযী রাফা'আস সামাওয়াতি বিগাইরি আমাদিন তারাউনাহা সুম্মা ইসতাওয়া আলাল আরশি ওয়াসাখখারাশ শামসা ওয়াল কামারা কুল্লুন ইয়াজরি লিআজালিন মুসাম্মা ইউদাব্বিরুল আমরা ইউফাসসিলুল আয়াতি লাআল্লাকুম বিলিকা'ই রাব্বিকুম তুকিনুন সাদাকাল্লাহুল আযীম। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج انشاءاللہ سورہ رعد سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے یہ نشست اس کے اندر آرڈر کے اعتبار سے یہ 13 سورت ہے قرآن پاک کی، لیکن نزول کے اعتبار سے جو یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 96 نمبر پہ آتی ہے نزولی اعتبار سے۔ یہ بھی بالاتفاق مکی سورت ہے، اس میں ٹوٹل 43 آیات 43 اور 6 رکوز ہیں۔ اس سورت کو سورہ رعد اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں آگے چل کے دیکھیں گے آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر آئے گا، جو ایک بہت ہی جو کڑکنے والی زوردار جو بجلی جو کڑکتی ہے اس کو رعد کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے رعد سورہ رعد کہتے ہیں۔ اس میں بھی اسی طرح مکی سورتوں کی طرح عقائد کا ذکر ہے، اور تین بنیادی عقائد، نمبر 1 از توحید، نمبر 2 اس نبوت، اور نمبر 3 اس بعثت جو ہوتی ہے بعد الموت کے، دوبارہ اٹھائے جانے کے، کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا جزا و سزا ہوگا، اس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ ایک جو چیز ورتھ نوٹنگ یہاں پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات سے جن صورتوں کی بگننگ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہیں جو صورتیں، ان میں ساتھ میں قرآن کا ذکر ہمیشہ آتا ہے۔ یہاں پہ دیکھنے کی بات ہے، ایسا ہی علمی نقطہ ہے، بٹ الف اس میں الف لام میم را تلک آیات الکتاب، کتاب کا ذکر آیا۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جہاں جہاں مقطعات کا ذکر آ رہا ہے وہاں پہ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ذکر بھی ضرور آ رہا ہے۔ اس صورت میں غور کیا جائے تو تقریباً 8 کے قریب کی پوائنٹس ہمیں سمجھ آتے ہیں، بیسکلی 8 پوائنٹس۔ نمبر 1 از، سب سے پہلے اس میں جو اللہ کی وحدانیت ہے اس کے دلائل ملتے ہیں، جیسے ابھی آئے نمبر 1-2-3 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ کس طرح اللہ نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ثم استوى علی العرش، یا استوى علی العرش سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے عرش پر مستوی ہے، اسے عام ہم جیسے انسانوں کے سمجھنے کی ہمارے بس کی بات نہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور یہ پھر سورج اور چاند، اور یہ کس طرح سے اپنے ایک آربٹس کے اندر تمام جو سٹارز ہیں اور جتنے بھی پلانٹس ہیں اور ایسٹروائڈ میٹیورائڈ جو اس یونیورس کے اندر جو باڈیز ہیں وہ اپنے ایک آربٹس کے اندر فلوٹ ہوتی ہیں اور کوئی آپس میں کسی کا ٹکراؤ نہیں نظر میں آتا، تو یہ خود ان سیلف اللہ کی ایک بہت ہی بڑی وحدانیت کی، جو اس کی سپریورٹی کی اور اس کی ون اینڈ اونلی ہونے کی دلیل اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر نمبر 2 اگر ہم پوائنٹ دیکھیں اس میں اور کیا سمجھ آتا ہے، تو ورس نمبر 5 آیت نمبر 5 پہ جا کے ہم غور کریں اگر، تو وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَقَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ یہاں پہ بیسک جو نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، ان لوگوں کے لیے یہ چیز کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا، تو یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا ہوگا کیسے، ان کی یعنی سمجھ سے ہی یہ چیز باہر تھی۔ تو کہ اب وہ ایک ون گاڈ جو سپیریئر، جو سب ان کے بتوں کو وہ پوچھتے تھے، لیکن ایک فائنل اللہ کو وہ بھی مانتے تھے کہ ایک کوئی گاڈ ہے، اور وہی گاڈ جو ہے وہ آسمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، زمین ہم دیکھ رہے ہیں، چرند پرند سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو بنانے والا ہے، لیکن یہ جو مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہوگا اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ ये वो बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि किस तरह से कोई व्हेन अ डेड बॉडी इज़ यू नो इट्स जस्ट वर्म फूड, जो कीड़े मकोड़े उसको बॉडी को खा जाते हैं सारे, साइंस ये कहती है आज की भी, और जैसे मुशाहिदा भी देखने में नज़र में आता है, एवरी लिविंग थिंग को दूसरी बींग्स ही खा जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पे इन्हें भी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता था वो यही होता था। तो इसके बारे में ख़ास तौर से ये आयत नंबर 5 में हमने देखा कि उन्हें एड्रेस किया गया कि ये लोग कैसे ताज्जुब करते हैं इस बात पे और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर हम आगे चलते हैं अगर, तो इंसान की हिफाजत के बारे में बताया गया कि किस तरह से फरिश्ते उसे उसकी हिफाजत पर मामूर होते हैं। लेकिन हाँ, अब अगर कोई कौम, कोई बंदा, कोई भी शख्स हो जो खुद ही अपने ऊपर नेमत की बजाय किसी मुसीबत या इस तरह की चीज़ को आजमाइश को या उसको लाजिम करना चाहे, तो फिर अल्लाह भी अपना मामला बदल देते हैं। तो इस तरह की बातें करते हुए ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, सॉरी पॉइंट नंबर 3 इस तरह से हो गया। पॉइंट 4 अगर हम नोट करें तो उसमें बेसिकली फिर ये, हाँ इस तरह से हम इसको 2 डिफरेंट पॉइंट्स में अगर डिवाइड कर दें। पॉइंट 2 वॉज़ के अल्लाह ने इन फरिश्तों को यहाँ पे इन आयतों से पता चलता है हिफाजत के लिए मामूर किया। और फिर नंबर 4 फोर्थ पॉइंट इस पॉइंट के अल्लाह ने अपना मामला बदल देते हैं जब कोई कौम खुद ब खुद अपने लिए मुसीबत को पसंद करती है और बुलाती है, मासियत करती है और अल्लाह के कहर और अज़ाब को बुलाती है अपनी तरफ, फिर अल्लाह उनके साथ वही मामला करते हैं। फिर आखिरी चीज़ ये जो अहले बातिल होते हैं, इन्हें ये आयत नंबर 17 को ख़ास तौर से अगर हम गौर से पढ़ें, अनजला मिन समाई मान फसालत औदिया तुम बिकदरिहा फहतमल सईलू ज़बदन राबियन व मिम्मा यूक़िदून अलैही फिन्नारी इब्तिगा हिलयतिन औ मताइन ज़बदुन मिसलुहु इला आखिर आयत। ये यहाँ पे ख़ास तौर से एक चीज़ नोट करने की क्या पता चली, सैलाब ज़बद जो झाग को कहते हैं, सैल कहते हैं सैलाब को, फहतमल सैल सैल सैलाब को कहते हैं जो कहीं पे भी बहता हुआ पानी जो जा रहा होता है और उसके ऊपर एक झाग होती है उस पानी के, तो ज़बद उस झाग को बोलते हैं। और जो बातिल है और जो अहले बातिल को इस इन्हें यहाँ पे इस उस सैलाब की जो झाग है उससे तशबीह दी गई है, जो बज़ाहिर है तो हर जगह ऊपर से अगर हम गौर करते हैं वो हमें सिर्फ झाग ही नज़र आ रही होती है, सिर्फ उसके वो वाइट वाइट जो बबल्स होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इन रियलिटी उसकी कोई औकात नहीं होती। अगर उस पानी में एक छोटा सा कोई तिनका भी फेंका जाए तो वो नीचे सिंक हो जाता है, तो टेक्निकली उसकी कोई वो हैसियत नहीं होती, बस देखने में ऐसे लगता है कि ये हर जगह फैला हुआ है और सिर्फ इसी की असल वैल्यू है। फिर इसी में आगे हम देखते हैं कि जो अहले हक होते हैं उनका बताया गया कि उनकी जो एग्ज़ैम्पल है, कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक्का वल बातिल फअम्मा ज़बदु फयज़हबु फयजफा अम्मा मा यनफा नासु फयमकसु फिल अर्ज़ कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु अम्सालु लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहु इला आखिर आयत। यहाँ पे मतलब देखने की बात यही है, जो हक के अहले हक वाले लोग होते हैं उन्हें सोने और चांदी के साथ तशबीह दी जा रही है, जो ज़मीन पर ठहरा रहता है, एक सॉलिड होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू उसके अंदर मौजूद होती है, उसे कोई चीज़ ऐसी आर पार नहीं कर सकती, उसके अंदर कोई चीज़ पेनिट्रेट नहीं कर सकती इतना इजीली। तो जो अहले हक होता है, जो सही अल्लाह को मानने वाला होता है, वो सॉलिड होता है, इससे ये पता चलता है एक चीज़ हमें। फिर इसके अंदर हम आगे अगर देखें आयत नंबर 20 से ऑनवर्ड्स, तो जो ईमान वाले जो होते हैं, अहले तकवा जो लोग होते हैं, अल्लज़ीन यूफ़ून बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुज़ून अल-मीसाक़, के यहाँ से ऑनवर्ड्स उन अहले तकवा वाले लोगों की जो अल्लाह के वादे को पूरा करते हैं, उनकी सिफ़ात को बयान किया गया। तकरीबन 8 के करीब इनकी सिफ़ात जो बयान हो रही हैं इससे, नेक्स्ट आयत नंबर 21 में, वल्लज़ीना यसिलून मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफून सू अल हिसाब वल्लज़ीना सबरु इब्तिगा वजह रब्बिहिम व अकामुस सला व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊना बिल हसनति अस्सय्यात उलाइका लहुम उक़बद्दार। ये इला आगे अगर हम आयतों में देख रहे हैं, तकरीबन 8 के करीब हमें जो सिफ़ात वाज़ह तौर पर यहाँ पर नज़र आती हैं जो अहले तकवा की, सबसे पहली सिफ़त वल्लज़ीन यसिलून मा अमर अल्लाह, जो उन्हें अल्लाह का हुक्म दिया है उसे अहद को वो पूरा करते हैं पहली बात, और फिर जो जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया वो उन्हें जोड़ते हैं, और वो अल्लाह से डरते हैं और वो खौफ रखते हैं अल्लाह का, और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے جو مال اللہ نے انہوں نے دیا ہے اسے وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ اہل تقویٰ کی جو ان آیتوں میں آگے صفات بیان کرنے کے بعد، پھر تین قسم کی جو جو بدبخت جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے جو حق کو ٹھکراتے ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں، ان کی تین صفات بیان کی گئیں آیت نمبر 25 پہ اگر ہم غور کریں۔ والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار، کہ پہلے یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ یہ جن رشتوں کو اللہ نے حکم رکھا دیا تھا قائم رکھنے کا، وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور یہ زمین میں ویفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہ جو فساد پھیلانے کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا سخت معاملہ ہے۔ فساد فی الارض دنیا کا سب سے بڑا جرم اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں تو ہے ہی ہے، کیونکہ ایک تو نارمل، جیسے پہلے بھی پیچھے بات گزری تھی، فساد فی الارض کے اندر دوسرے وہ لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں جن کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، اور جو بیچارے معصوم مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ تو فساد فی الارض کو اللہ نے بار بار بہت زیادہ ایمفسس کے ساتھ ایڈریس کیا ہے، اور اس کی برائیوں کو اور اس کے ساتھ نمٹنے کے طریقے بھی بہت جگہ دوسری قرآن میں، جیسے قتل کی سزا قتل ہے، تو وہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ لوگ فساد پھیلانے میں ایکسیڈ نہ کریں، پھر آگے نہ چلیں۔ اور اس فساد فی الارض کے لیے اللہ نے خاص طور سے یہاں پہ بھی، اسی لیے اس آیت میں جو آیت نمبر 25 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے یہی فرمایا، اللہ یفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کو کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی اور انہیں برا ٹھکانہ، سوء الدار بہت ہی برا ٹھکانہ، دار گھر کو کہتے ہیں، بہت ہی برا ان کے لیے، یعنی ایک ڈیسٹینیشن اللہ نے فائنلائز کر دیا۔ اور یہ یفسدون فی الارض کے اندر پھر ہم، ظاہر ہے یہ ہر لیول پہ پھر اپلیکیبل ہوتا ہے۔ فساد پھیلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جا کے زمین میں ہی کوئی چوری ڈاکے ڈال کے فساد پھیلا رہا ہے، ایسی قتل و غارت پیسوں کے لے کے کر رہا ہے، لیکن گھر میں، ہر جگہ، کوئی بڑے چھوٹوں میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ فساد کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، اور یہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ تو ہر اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر فائنلی جو مقام نبوت ہے، یعنی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لے لیں، یا ویسے بھی جو ایک نبی ہوتا ہے ان کے بارے میں، کہ جو یہ سارے انبیاء ہوتے ہیں، یہ بھی دوسروں کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے، تو یہ ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو بشر ہے۔ یہ آگے چل کے ابھی ہم آنورڈز دیکھیں گے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ، پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، یا اس طرح کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری دعوت کے لیے، تو اللہ نے ان کے لیے انہی جیسا ہمارے ایک انسان بھیجا، اور اس کی وجہ تھی ہی یہی کہ ایک انسان اپنا عملی نمونہ سامنے، ایک لائف سٹائل پیش کر کے دکھائے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ سب سے اسوہ حسنہ پر ہیں، سب سے بہترین جو اللہ کے نزدیک جو کریکٹر ہے، یہ اس کے اوپر فائز ہیں۔ تو جس نے بھی دین پر چلنا ہے وہ بس انہیں فالو کر لے۔ اسی لیے کہا میں یوت رسول فقد اطاع اللہ، تو اسی لیے اللہ نے یہاں پہ بھی پھر 8 پوائنٹ فائنلی اگر ہم نوٹ کریں، تو نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی کہ اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کہ یہ، اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کو نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ یعنی اہل کتاب کو یہاں یم اللہ ما یشاء و یثبت بھی تو اندہ ہو ام الکتاب، یہ جو ان آیتوں کے اندر اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب کا تذکرہ آتا ہے، کہ یہ آپ کو اس، جیسے پہلے بھی گزرا تھا کہ یہ آپ کو اسی طرح پہچاتے ہیں کہ ابناؤہم، کہ یہ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اسی طرح آپ کو پہچانتے ہیں، صرف اپنی ضد اور عناد اور ان کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ بالکل اینڈ میں صورت میں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب मैं उनकी रुबाज़ कुल इन्नमा उमिर तो अन आबुद अल्लाह वला युशरिक बी इलैही। ये साफ साफ नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि मैं अन अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वला उशरिको भी, उसके साथ शिरक नहीं ठहराओ, और इलैही उदू व इलैही माम, मैं उसी के पास तुम्हें बुलाता हूँ सिर्फ। और वह कज़ालिक अनज़लना हुक्मन अरबियन, ये बिल्कुल क्लियरली वाज़े तौर पर अरबी ज़बान में, तुम्हारी अपनी ज़बान में हालांकि हुक्म दिया जा रहा है। वला अत्तबात अहवाओं बाद माजा का मिन अलमी माल का मिन अल्लाही मिन वली वला वाक। और फिर वला कद, एक तो यही कि बिल्कुल ही अपने अहवाहुम, अपनी नफसी ख्वाहिशात को की पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं, फॉलो करते हैं। और फिर आगे आयत नंबर 38 में देखें, वला कद अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रियतन वमा काना लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कि ये तो लिकुल्ली अजल इनके था, ये तो अपनी तरफ से कोई आयत नहीं लाते, ये सिर्फ अल्लाह बिइज़्निल्लाह या याती भी बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये आयत तमाम आयत अल्लाह की मर्ज़ी से लाते हैं। तो ये सारी बातों की अगर हम गौर किया जाए इसमें, तो आखिरी फाइनली सेकेंड लास्ट आयत में आयत नंबर 42 के अंदर भी देखें, अवलम यरवन्ना ना तिल अर्ज़ा ना नन कुसुआ मिन अतराफ़िया वल्लाहु यहकुमु माला मुअक्किबु लिहुक्मिही वहुव सरीउल हिसाब वक़द मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलिल्लाहिल मकरु जमीअन यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन फ़सयअलमु अल-कुफ़्फ़ार लिमन उक़बद्दार वल्लज़ीना यक़ुलुज़ीना कफ़रु लस्त मुरसलन क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। कि अल्लाह ने ख़ुद शहादत दी पहले जो मकर करने वाले, बुराई करने वाले, कि वो तो पहले भी ऐसे करते ही थे, यहाँ पे नबूवत की ख़ुद शहादत दी कि जो झुटलाते हैं कफर हु यानी कुफर करते हैं या आपको झुटलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई भेजा नहीं है, इनके पास पहले इनके पास पहले भी लोग भेजे गए थे, इन्हें डराते रहे थे, लेकिन ये तो अपनी हठधर्मी की वजह से सिर्फ इसे झुटलाते हैं। कुल इनसे यही कहिए, कफ़ा बिल्लाही शहीदा बैनी व बैनकुम व मिन इंदहु इल्मुल किताब, कि अल्लाह ही काफ़ी है गवाह के तौर पर, शहीद यानी कि विटनेस के तौर पर, मेरे दरमियान बैनी व बैनक और तुम्हारे दरमियान, मोमिन इंदहु, और उसके पास इल्मुल किताब, ये सब के सब चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे हमें वो आई क्लाउड के ऊपर पीछे आज के ज़माने में हम देखते हैं एक बैकअप हो जाती है पूरी कॉन्वर्सेशन, और पता ही नहीं चलता आप किसी भी वक्त कहीं भी पूरा पूरा रिकॉर्ड आजकल के ज़माने में इंटरनेट का दौर है तो निकल आता है। तो ये सब भी इनका जो इल्म है इन सब चीज़ों का, वो अल्लाह के पास महफूज है, और वो जब चाहे इसे निकाल सकता है, इसे इनके सामने ला के रख देगा। यहाँ पे ये सूरत ख़त्म होती है, और नेक्स्ट हम देखते हैं सूरह इब्राहिम को। ये फिर नेक्स्ट सूरत तरबियती तरतीबी एतवार से यानी कि ऑर्डर के हिसाब से ये 14 सूरत है कुरान की, और नज़ूल के एतबार से दिस इज़ द 72nd सूरत, 72 नंबर पे नाजिल हुई। ये सूरत भी मक्की सूरत है, और सूरह इब्राहिम के अंदर तक ये 52 के करीब आयात हैं और 7 रुकू हैं। इसमें हम आगे चल के देखेंगे आयत नंबर 35 से ऑनवर्ड्स 41 पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है, और इसी मुनासबत से इसे सूरह इब्राहिम कहा जाता है। इसमें भी हम पहली आयत में अगर गौर करें, अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। यहाँ पे भी हुरूफ़ मुकत्तआत से शुरू हुआ, और जैसे पहले बात चली थी सूरह रात के शुरू में कि हुरूफ़ मुकत्तआत के साथ देखा ये जाता है कि कुरान का ज़िक्र, यहाँ पे भी अलिफ लाम रा किताब, वहाँ पे भी उनज़िला किताब था, और शुरू में भी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, तो ये कुरान का ज़िक्र ज़रूर आता है हुरूफ़ मुकत्तआत के साथ। ये कुरान का अजीब मौजज़ा है। इसमें भी उसी तरह लास्ट सूरत की तरह देखा जाए तो अकायद से बहस चलती है, और तीन बुनियादी जो अकायद हैं वो वही तौहीद रसालत और बास व जज़ा के मरने के बाद दोबारा उठाए जाना, और सज़ा व जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो नज़र आता है। दूसरा चीज़ इस सूरत के अंदर हम देखेंगे आगे चल के अगर हम आयत नंबर 23 पे चलते हैं या उससे भी आगे 28 पे या 31 पे, तो हम गौर करेंगे कि यहाँ पे जहन्नुम की वईद और जन्नत के वादे हैं कि जो बुरा करेगा काफिर वगैरह उनकी मजम्मत और उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है और जहन्नुम की वाइद सुनाई जा रही है, और इसके बरक्स मोमिनों के लिए जन्नत के वादे और खुशखबरियाँ और उन्हें अच्छी रिस्क और फरावानी और एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ मिलने की हमें तसलियाँ मिलती हैं। और थर्ड पॉइंट हम अगर गौर करें इधर, तो जो नबी अलैहिस्सलाम हैं उनको इसमें ख़ास तौर से हम देखेंगे कि तसल्ली देने का एक अंदाज़ अल्लाह ने इसमें इख्तियार किया है, जो साबका अंबिया के साथ भी इनकी कौमों ने, क्योंकि एराज़ और उनका इनकार और उनसे दुश्मनी और उनकी अगेंस्ट बातें और उनके फितने फसाद और सारी जो साजिशें वगैरह की थी, तो यही रवैया नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी अपनाया। और इसीलिए एक उन्हें तसल्ली देने का अंदाज़ ये था कि साबका कौमों की जो गुफ्तगू थी, जो कॉन्वर्सेशन थी विद देयर पीपल, उससे एक डिफरेंट बिल्कुल एंगल से यहाँ पे नज़र आता है कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो उस पहले के जो अंबिया थे उनकी ज़माने में भी मुशरिकीन जो थे वो सबसे पहले तो अल्लाह सुबहानहू व तआला के वजूद के बारे में कन्फ्यूज़ रहते थे या उस शक करते थे और शुबा करते थे, तो और वो मुशरिकीन जो थे वो उनके बारे में ये कहा गया, और जिस चीज़ की तरफ तो तुम हमें बुलाते हो हम इससे कभी शक में हैं, हम तो वो साफ साफ हैं अपने अम्बिया जो उनसे कहते थे। तो इसका जो जवाब होता था दो अम्बिया वो जितने भी रसूल थे वो उन्हें डराते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे और सीधा सीधा बोलते थे, अल्लाह के बंदो क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में शक करते हो, ये आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, ये सब चीज़ें ये देख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी शक करते हैं। और फिर ये कि कायनात की एक एक चीज़ जो अगर गौर किया जाए तो ये हर चीज़ के अंदर अल्लाह की वैदानियत का सबूत खुद ब खुद मिलता है। आसमानों को देखें, ज़मीन को गौर करें, या आगे इन चीज़ों को जितनों को भी अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह के सारे ब्यूटीज़ हैं, दुनिया में अल्लाह ने जितनी भी अल्लाह की तख्लीकात हैं इन सब पे अगर गौर किया जाए तो कोई इसमें शक की बात ही नहीं है कि अल्लाह की वहदानियत का सब बोल बोल कर ख़ुद गवाही देती हैं। ये सिर्फ आँख का कसूर होता है, जैसे पीछे गुजरा था लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हूना बिहा, क्योंकि इनके पास वो दिल होते हैं जो इस बात को समझते नहीं है, लहुम आयुनुल्ला युबसिरूना बिहा, वो आँख वो चीज़ देख ही नहीं सकती, व लहुम आज़ुनुल्ला यस्मऊना बिहा, और इनके कान होते हैं जो सुन ही नहीं सकते, क्योंकि उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की तरह होते हैं, ये देखने में फॉर्म में अपने फिजीक में फिगर में और बनावट में तख्लीक में देखने में तो इंसान होते हैं बट इनकी मेंटालिटी बिल्कुल जानवरों जैसी होती है। और फिर आगे दूसरी बात अगर गौर करें तो रसूल जो होता है, जो अल्लाह का भेजा हुआ, ये एक दूसरा इश्काल जो मुशरिकीन करते थे वो ये समझते थे कि बशर रसूल नहीं हो सकता, यानी कोई भी आदमी जो होता है वो कैसे रसूल हो सकता है, तो रसूल तो कोई ख़ास डिफरेंट कोई फॉर्म होगा, वो हम जैसा इंसान नहीं हो सकता। तो उसको उन्हें हम अम्बिया कलाम जितने भी थे वो ये जवाब देते थे कि हम तो बिल्कुल जैसे सूरह काफ में भी आखिरी आएगा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तो यहाँ पे भी देखते हैं अम्बिया ने सब अम्बिया ने उन्हें यही कहा कि बेशक हम बशर ही हैं लेकिन बशर रसूल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। रसूल हर वो बंदा होता है जिस पर वही नाजिल होती है और हम पर वही नाजिल होती है, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, बिइज़्निल्लाह होता है, इसमें हमारा कोई कमाल थोड़ी होता है। और जो हिकमत इलाहिया है उसका तकाजा भी यही है, अगर देखा जाए बात लॉजिकल भी समझ आती है कि इंसानों की तरफ किसी इंसान को ही नबी बनाकर भेजा जाए, अगर अल्लाह सुबहाना व ताला ज़मीन पर किसी फरिश्ते को उतार देंगे तो वो बोलेंगे ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, ये अमल कर सकता है, हम इस जैसी मखलूक ही नहीं है, हम इस जैसे काम कैसे कर सकते हैं। हाँ अगर दुनिया में पूरी होते ही फरिश्ते तो फिर किसी फरिश्ते को अल्लाह नबी बनाकर भेज भी देते, लेकिन क्योंकि दुनिया में इंसान आबाद हैं, ये अशरफुल मखलूकात भी है, तो उनके लिए एक इंसान को ही उन्हीं जैसा लकत कानकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उन्हीं जैसा एक इंसान बनाकर भेजा जो उस्वा हसना पर फाइज, जो जिसका मकाम था, तो इन्हें सिर्फ उन जैसा बन जाने का ही टारगेट मिला। और लेकिन बहरहाल ये फिर थर्ड ये था कि मुशरिकीन तो ये उसके आगे से दलील देते थे कि नहीं हम तो अपने आबा व अजदाद के दीन पर हैं, बहरहाल ये इनकी हठधर्मी थी और वो अपने बाप दादा के दीन से हटना नहीं चाहते थे। अगरचे वो गलत हो, बातिल हो, लेकिन फिर भी उनकी ये ज़िद या बहाना कह लें जो भी था, उनकी वो अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते थे, बेसिकली इस एंगल से समझना चाहिए। और फिर अगली बात, ये बात मौजे पे इश्काल करते थे, चौथा जो फोर्थ नंबर पे जो ये शोभा करते थे कि जो हम मुतालबा आपसे जो डिमांड करते हैं मौजज़ा दिखाने की, वो आप क्यों नहीं दिखाते हमें। तो अम्बिया कराम जितने भी थे वो ने यही कहते थे कि किसी भी मौजज़े का जो दिखाना है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, मौजज़ा दिखाना अल्लाह के हक में है, जब उसकी मर्ज़ी होगी, जिसके साथ उसकी मर्ज़ी होगी वो दिखाएगा, जिसके साथ मर्ज़ी होगी नहीं दिखाएगा, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल लेकिन ये फिर भी वो तो इश्काल करते थे करने वाले, और वो इस पर क्वेश्चन करते थे। और नंबर फिफ्थ क्वेश्चन फिर वो शुक्र के ऊपर करते थे। ये आयत नंबर 7 में अगर ख़ास तौर से हम गौर करें, वइस्तअज़ना रब्बुका लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ये अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त आयत उतारी कि वइस्तअज़ना रब्बुका, जब तुम्हारे रब ने तुम्हें पुकारा, लइन शकरतुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं बढ़ाऊँगा, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने मेरी बात को झुठलाया तो मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त सख्त है। शुक्र जो होता है, इसके बारे में इसकी रियलिटी है कि जो अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह ने जो फ़ज़ल और एहसान फरमाया उस पर, वो उसका इकरार करे, उसे एक्सेप्ट करे और उसकी तारीफ़ करे, और नेमत को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करे जिस मकसद के लिए वो नेमत अता की गई है। इसमें बहुत सारी नेमतें हो सकती हैं, जैसे कोई नेमत अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है तो उसका शुक्र अदा करने का मतलब यह है वो इस इल्म को आगे पहुंचाए, कोई जाहिल है उसे तालीम दे, कोई चाहे ABC सिखाने से लेकर बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बनाने तक हो, ये सब एक बहुत ही नोबल कॉज है और ये एक नेमत है अल्लाह की, और इसी इस पर शुक्र अदा करने का मकसद ये है इसे आगे फैलाया जाए। और दूसरा नेमत अगर अल्लाह की हम देखें तो माल है, पैसा, वेल्थ, इसका शुक्र करने का मतलब क्या है कि इसे वो सही जगह पर अच्छे कामों में खर्च करे, यानी जो बुरे काम, गुनाह के काम, या कहीं अगर एक बंदा है वो नाइट क्लबिंग के अंदर और पार्टीज़ और डिस्कोज़ और सिनेमाज़ और सिर्फ इन चीज़ों में अपने पैसे उड़ा रहा है, तो वो उसका एक तरह से अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है। अल्लाह ने उसे ये माल दिया था शुक्र अदा करने के लिए, और उसने इसका शुक्र करने की अदा करने के बजाय उसकी नाशुक्री की, वो इस तरह कि उसके माल को गलत जगह पर लगाया और गलत ज़ाया किया। तो इसी तरह फिर बहुत सारी नेमतें अल्लाह की ज़ाहिर होती हैं, जो इल्म हो, माल हो, या और जितनी भी नेमतें हों, हम इसको अज़ूम उनको इसी तरह से कर सकते हैं। उन नेमतों को शुक्र करने का मतलब यही होगा जो लॉजिकली उन्हें सही जगह पर खर्च किया जाए, अच्छी जगह पर, जो अल्लाह की पसंदीदा जगहें ज़ाहिर है, उनमें और अजर मिलेगा, उसका अजर व सवाब एहसान ज़्यादा होगा। यही अल्लाह का एहसान और शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि वो जो भी नेमत होगी उससे वो सही उसके मसारिफ़ में खर्च करे, चाहे वो इल्म जैसे माल की एग्जांपल दी गई, और कोई भी नेमतें हों जो अल्लाह ने उसे हाथ पांव दिए हैं, उसे अच्छे कामों में लगाए, और अल्लाह ने कोई नौकर चाकर दिए हैं तो उनसे अच्छे काम करे, उन पर जुल्म ना करे, या इस तरह का हर काम में अच्छा करे। और जैसे कि हदीस पाक में आता है, इंसान का बेहतरीन जज जो होता है वो उसका अपना दिल होता है, जब वो गलत काम पे होता है तो उसका अपना दिल कहता है कि ये गलत है, उसको दिल खटकता है, उसे वो काम के ऊपर परेशान करता है, और अगर उसका बात सही होती है, वो हक पर होता है और सही दीन पर चल रहा होता है, तो उसका दिल गवाही देता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। तो इन नेमतों को उसी पे कयास कर लेना आगे बहुत इजी हो जाता है। अब एक चीज़ इसके अंदर और हम गौर करते हैं, नंबर सिक्स के आयत नंबर 35 में, जैसे सूरत, क्योंकि ये सूरह इब्राहिम है तो इसके हवाले से ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआओं का ज़िक्र है। वज़ कौल इब्राहिम रब्बी अजअल हाज़ा बलद आमिनन वज नबनी व बनी अन्नाबुद अस्नाम रब्बी इन्ना हुन्ना ज़ललना कसीरम मिन अन्नास फमन तबिअ फइन्नहु मिन्नी व मन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ये इन आयतों में उनकी वो दुआएं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी थी, उनका खसूसी तौर पर ज़िक्र किया अल्लाह ने। जो पहले जब वो मक्का तशरीफ़ लाए और इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाने काबा की उन्होंने तामीर फरमाई, तो उसके बाद ये अहले मक्का और अपनी औलाद के लिए और अपने ख़ानदान वगैरह वगैरह के लिए उन्होंने दुआएं की थी। उन दुआओं में एक यही था, रब्बी अजअल ये जैसे आयत नंबर 35 में अभी हमने पढ़ा भी कि रब्बि जअल हाज़ा बलद आमिना, कि इस शहर को अमन वाला बना। और आज हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल भी मक्का में चोरी चकारी करना ये ज़रा नस्बतन दूसरी दुनिया के मुसलमानों के इलाकों में से नस्बतन कम ही अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। अल्लाह इसकी हिफाज़त फरमाए। और रिस्क की फरवानी है दुनिया जहाँ की, कोई ऐसे ऐसे फ्रूट्स मैंगो से लेकर कौन कौन से पता नहीं राइस की क्वालिटीज़, और दुनिया जहाँ की जो फूड आइटम्स मक्का में मिलते हैं वो दुनिया में कहीं दूसरी जगह शायद ना मिलते हों। अगरचे वो एक डेज़र्ट है और वहाँ ख़ुद कुछ भी नहीं उगता, बट ऐसे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें वहाँ पे। और फिर वहाँ दिलों का एक मिलान होता है आपस में, लोग एक दूसरे के साथ अच्छाई करने का एक जज्बा अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में होता है। नमाज़ वहाँ पे कायम होने की अल्लाह उन्होंने एक और दुआ मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नमाज़ बिल्कुल बाजमा परफेक्शन के ऊपर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। उससे कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाज़त फरमाए। और फिर आखिरी बात, उन्होंने मगफ़िरत की दुआ की थी, दरख्वास्त की थी, तो बारह अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उन्हें उनकी सारी दुआएँ कबूल फरमाईं, तो इसलिए उम्मीद यही की जा सकती है कि अल्लाह आगे उनकी औलादें और हम सब क्योंकि उनकी औलादों में से ही हैं तो हमारे साथ भी अच्छाई का और मगफ़रत का ही मामला फरमाएंगे। और एक आखिरी बात, सॉर्ट ऑफ ये इसके अंदर गौर करने वाली सूरत में जो ज़रूरी है वो ये जो शजरा तैयबा और शजरा खबीसा दरख्तों का जो ज़िक्र आता है आयत नंबर 24 के अंदर, अलम तरा कैफ़ा ज़रब अल्लाह मसलन कलिमतिन तैयबतन का शजरतिन तैयबतिन असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुती उकुलहा कुल हीन बिज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साला लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन अजतुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मालहा मिन क़रार इला आख़िरिल आयात। इनके अंदर जो हक और ईमान होता है, सही और गलत और हक और बातिल, इनकी बात यहाँ पे समझ आती है कि जो सही हक और ईमान होता है उसे शजरे तैयबा यानी कि एक प्योर जो पाक दरख्त, और जो बातिल होता है गलत काम जलालत वाला, उसे यहाँ पे उस किस्म के कलमे को यानी बात को भी शजरे खबीसा यानी नापाक दरख्त से एक तरह से तशबीह दी है अल्लाह पाक ने। जो कलमा तैयबा जो होता है वो अगर वाकई दिल में उतर जाता है तो उसकी जड़ बड़ी मज़बूत और उसका फल बड़ा मीठा एंड स्वीट होता है। और जो कलमा खबीसा होता है उसके उसके लिए कोई बेस नहीं होती, स्ट्रांग नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती। पीछे जैसे हमने पढ़ा वो झाग की तरह होता है, जुबत जैसे पीछे आया था कि ये बातिल जो है ये सैलाब के ऊपर झाग की मानंद है, तो ये उस झाग की तरह ही होता है। जबकि कलमा तैयबा उस सोने और चांदी की जिसकी मिसाल दी गई थी पीछे, उसकी तरह सॉलिड होता है, वो बेस में जड़ में मज़बूत होता है। इसके बाद नंबर 7 एक और क़यामत की मंजर कशी अल्लाह ने की इसके आखिरी रुकू में, कि वो इस तरह के जो जहन्नुम के जो हौलनाक अजाबों का अल्लाह ने तस्करा किया, तो ये बात एक और करने वाली इसमें मिलती है। और फिर फाइनली बिल्कुल आयत नंबर 52 के अंदर अगर हम जाएँ, हाज़ा बलागुलनासी वली उनज़िरू बिही वली यालमु अन्नमा हुवा इलाहु वाहिद वली यज़्ज़क्करु उलिल अलबाब, कि ये एक कुरान की हिकमत को अगर हम उसका पहलू गौर में देखें तो इस सूरत के भी जैसे शुरू में नुज़ूले कुरान की हिकमत का क्योंकि बयान हुआ था, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ आखिरी आयत में भी इसी मकसद जो नुज़ूल बयान किया गया है, वली अंजुरु भी वली आलम उन्नमा वला वाहिद वली यज़क्कर हाज़ा बलागुल नास, ये जो इसका कोर इस कुरान का मकसद था कि ये कुरान लोगों के लिए अल्लाह का पैगाम है ताकि इससे इन्हें डराया जाए, ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है, और ये जो उलिल अलबाब हैं जो अहले अकल वाले ये इससे नसीहत हासिल करें इस बात से। तो यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इब्राहिम ख़त्म होती है। आज यहीं पे रोकते हैं, कल इंशाल्लाह सूरह हिजर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।